माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रेम को दिया उस प्रेम को प्रचार करना, उसको समझना और जगत वासियों को देना, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन था। यदि इस मिशन में हम सफल हो सके तो ठीक, मैं भी उन्हीं के आदेश से आज सर्वत्र विश्व में हमें बुला रहे हैं और हम उनके मिशन का प्रचार कर रहे हैं। स्वामी जी प्रसन्न हो, आज रहते तो दौड़ करके आकर के हमें गले से लगा लेते। इफ ही वॉज हियर और एनी वेयर He could have run away to me and embraced me. Oh, you are doing so good. तो आज हम उनके दिरा में कुछ कर सकते हैं, बस इतना ही। वे कृपा करें जहां भी मरते नहीं है वैष्णव लोग, जहां भी वो नित्य हैं, आज उनको हम लोग दर्शन करने के लिए आए। अभी हम लोग कीर्तन करते हुए हम लोग अपने गंतव्य स्थान पर चलेंगे। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।
तिरुभाव तिथि के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका नाम जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर है, जिनका आप लोग यहाँ पर आलेख्य विग्रह देख रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की धारा में, रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी की धारा में एक महाप्रतिभाशाली आचार्य हो गए हैं। विश्व के कहीं किसी इतिहास में ऐसा प्रतिभाशाली महापुरुष, कृष्ण का भक्ति का विश्व में प्रचार करने वाला कम देखा जाता है। आज से पूर्व शंकराचार्य हो गए हैं, जिन्होंने 12 या 8 वर्ष की उम्र में संन्यास लेकर के विश्व में प्रचार किया था, तलवार के बल पर प्रचार किया। रामानुज बड़े बड़े क्षत्रिय राजाओं के बल पर प्रचार किया और लोगों ने भी ऐसे ही किया, किंतु ये महापुरुष आज से जितने भी आचार्य हो गए उन सभी आचार्यों के वैशिष्ट्यों को, विशेषताओं को क्रोड़ीभूत करते हुए अर्थात अपने अंदर में लाते हुए आदिभूत में थे और एक पैसा भी नहीं, काना कौड़ी नहीं, कुछ भी साथ न लेकर के अपने ओजस्वता के बल पर छोटे छोटे किशोर बालकों को, नवजुवक बालकों को, बालिकाओं को शक्ति संचरित कर उनको ब्रह्मचारी बनाकर, विशेष करके बालकों को उन्हें संन्यास दिया और कहीं से एक पैसा भिक्षा नहीं, एक एक पैसे केवल अधिक नहीं, और सारे विश्व में उन्होंने प्रचार किया। उनका नाम श्रील सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद है। आज के दिन उनका तिरोभाव माने जगत को छोड़कर के नित्य ब्रजधाम में राधा कृष्ण की उपासना में चले गए। आज से करीब करीब कितना 150 वर्ष पहले, ना आविर्भाव 1874 में उनका आविर्भाव हुआ था। बड़े तेजस्वी पुरुष थे। प्रभुपाद कहने से उन्हीं का नाम, यद्यपि अपने गुरु का को सभी लोग प्रभुपाद कह सकते हैं, किंतु प्रभुपाद के नाम से विश्व में वही प्रख्यात थे। पीछे अभी कुछ दिनों पहले उन्हीं के शिष्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, अभयचरण उनका नाम था, पीछे से हमारे गुरु जी से श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद में वो भी काना कौड़ी, एक पैसा भी साथ में नहीं, मालवाहक जहाज में अमेरिका गए और वहाँ के पार्कों में बैठ करके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि शिव का ताल बजा करके आंख बंद करके प्रचार करना आरंभ किया। कुछ दिनों के बाद में सारे विश्व में कृष्ण नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, सारे विश्व में प्रचार किया। उनको कोई पूछता नहीं था भारतवर्ष में जब थे, वक्तृता भी नहीं देने आ जानते थे, बड़े बुद्धिमान थे, बातचीत करने में कायल कर देते थे सब लोगों को। हमारे साथ बहुत दिन रहे, एक दो दिन नहीं, बहुत दिन रहे। किंतु संन्यास लेने के बाद में हमारे गुरु जी ने और श्रील प्रभुपाद श्रील सरस्वती ठाकुर जी ने उनके अंदर में शक्ति संचरित किया और विश्व में सर्वत्र उन्होंने प्रचार किया। उनके शिष्यों ने उनको प्रभुपाद कहना शुरू किया। चूंकि विश्व में सब जगह वो प्रचार हुआ, इसलिए सभी लोग उनको ही जानते हैं जो प्रभुपाद है, किंतु असल में प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद है। किंतु पीछे से ये प्रचारित हुआ। आज उन्हीं का तिरुभाव मने आज अपने राधा कृष्ण जी के सेवा में आज प्रवेश किए। आज का बहुत शुभ दिन है। विश्व में सर्वत्र ही जहां जहां उनके शिष्य प्रशिष्य इत्यादि हैं, सर्वत्र उनका यह उत्सव मनाए हैं। क्या किया उन्होंने, क्या किया आज विश्व के लोग जान रहे हैं, आप लोग जानते हैं। आज से 5000 वर्ष से भी पहले व्यास जी हुए थे। उनका नाम इसलिए व्यास है कि पृथ्वी में सर्वत्र भगवान नाम का, भगवान की कथा और भागवत का प्रचार किया। वो यदि नहीं आते तो धर्म कर्म हम लोग कोई भी हिंदू कुछ नहीं जानता। उन्हीं के बदौलत आज जो कुछ भी उपासनाएं हैं राधा कृष्ण की या और भी देवताओं की, सब उन्हीं की कृपा का फल है। गीता उन्होंने लिखा, वेदों का विभाग किया, श्रीमद् भागवत की रचना की और विश्व में सर्वत्र भक्ति धर्म का प्रचार किया, शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। इसलिए उनको व्यास कहते हैं, वेद व्यास। उन्होंने बतलाया जितनी प्रकार की उपासनाएं हैं, जितने प्रकार की भगवत्ता है, विश्व में भगवान के अवतार हुए हैं, उनका सबका मूल एक है। और वो एक क्या है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवत्ता की मूल ये कृष्ण है, उन्हीं से समस्त भगवत्ता निकली है, उन्हीं से राम हुए, उन्हीं से बलराम हुए, उन्हीं से परशुराम हुए, उन्हीं से और सब भगवान के अवतार नृसिंह कल्कि। ये गणेश देवी देवता जितने भी हैं उन सब के सेवक हैं, हनुमान जी उनके सेवक हैं, भगवान नहीं। लोग पीछे से भूल गए इस चीज को। श्रीमद् भागवत में देखिए, गीता में देखिए, जितने देवता हैं सब उनकी विभूतियां हैं। जो लोग भगवान का निरादर करते हैं, विभूतियों का आदर करते हैं, उनकी उपासना ठीक नहीं होती। उनकी उपासना क्या है, उस उपासना का भी कुछ फल नहीं है, वो विधिपूर्वक नहीं है। पेड़ की डाल में पानी मत दो, पेड़ की जड़ में पानी दो। पेड़ के पत्तों फूल में और डालियों में जितना भी पानी दोगे पेड़ नहीं बचेगा। पेड़ की मूल में एक बूंद भी पानी देने से वो सर्वत्र प्रॉपर रेशियो में वो विभक्त कर देगा। ये पेड़ की जड़ में इस ताकत है। मुख में हमारी ये ताकत है कि वहां पर देने से भोजन अन्न सब जगह पहुंचा देता है। आंख में शक्ति नहीं, वो आंख को फोड़ करके इसमें दूध दो देखो आदमी मर जाएगा। पेट को चीर करके इसमें अन्न डाल दो तो भी मर जाएगा, इसमें शक्ति नहीं है। इसी तरह से भगवान की उपासना करने से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जितने भी धर्म है हमारे यहाँ, यहाँ तक कि सिख धर्म भी हमारा ही है, हमारा वैदिक की रक्षा करने के लिए, वेदों के धर्म को, सनातन धर्म की रक्षा करने के हम लोग सिख बने। हम लोग अलग नहीं है, इसी से सभी आर्य समाज इत्यादि जितने निकले हैं सब इसी से निकले हैं। भारत में इसमें ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जो प्राचीन वैदिक सनातन धर्म से न निकला हुआ हो, किंतु धीरे धीरे हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए कृष्ण की उपासना सर्वोत्तम उपासना है, कृष्ण की बहुत सी प्रकार की उपासना है, किंतु गोपियों ने जो आराधना की कृष्ण की, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम परम्याकाचिदुपासना बजबध वर्गेण जा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलम प्रेमा कुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादरोनः परः। कृष्ण की आराधना सर्वोत्तम है। कौन कृष्ण की? महाभारत में युद्ध करने वाले कृष्ण की नहीं, वो आंशिक उपासना है, युद्ध भूमि में वो है। मथुरा के कृष्ण जिन्होंने कंस को मारा वो आराध्य तो है किंतु पूर्ण आराध्य नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, गोपीनाथ, आराधानाथ, आराधाकांत, गोपीकांत, ये हमारे पूर्ण आराध्य हैं। देखने में छोटे बंसी वाले गोवर्धन को धारण करने वाले ब्रह्मा शंकर विष्णु तक हुए, यहां तक कि नारायण इत्यादि सबको अपने अंदर में लेकर के आते हैं। इसलिए यदि राधा कृष्ण की उपासना हो गई तो सबकी आराधना हो गई, और उनमें सर्वत्र गोपियों की जो आराधना है सर्वश्रेष्ठ है। क्या आराधना! द्वारका की महिषियों ने उनको पति माना, किंतु ब्रज की स्त्रियों ने, रमणियों ने उनको अपना पति नहीं माना, प्रियतम माना। यदि आप लोग इसका अंतर समझते हैं तो समझेंगे, नहीं तो बड़ा कठिन है। बस मतलब प्रियतम किसको कहते? विवाह हो ना हो अपना हृदय उनको दे देना। प्रेम में लेना नहीं कुछ है, देना ही देना है। जो सर्वस्व अपना हृदय दे दे अपने प्रियतम को, तो प्रियतम भी अपना सर्वस्व दे देता है। इसलिए गोपियों की आराधना सर्वोत्तम है। उन समस्त गोपियों में चंद्रावली और राधिका जी श्रेष्ठ हैं, और उनमें भी श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधिका जी सर्वश्रेष्ठ है। उनका प्रेम कृष्ण भी वजन नहीं कर सकते, थाह नहीं लगा सके जो उनका प्रेम कितना है। इसलिए उनके प्रेम की थाह लेने के लिए, समझने के लिए राधा जी का प्रेम किस कोटि का है, चैतन्य महाप्रभु होकर के जगत में आए। राधा भाव दूत सुबलितम नौ में कृष्ण स्वरूप अंगलों में आए, और उसका छींटा जगत में देने के लिए, उस प्रेम का, प्रेम के लिए आदमी सर्वस्व दे देता है। तो यह प्रेम ही हमारे श्रीमद् भागवत का आराध्य है। कृष्ण नहीं, केवल कृष्ण हमारे आराध्य नहीं है। अरे कंस को, कंस ने भी तो कृष्ण को देखा, कहा आराधना की? पूतना अगासुर बकासुर ने देखा, वो आराधना नहीं है। कैसी आराधना चाहिए? इसलिए यदि प्रेम नहीं हमारे अंदर में तो आराधना नहीं होती। वो भी प्रेम कैसा? प्रेम भी पांच प्रकार का, जिसमें चार के प्रधान है। सखाओं जैसा, हनुमान जैसा, दास जैसा प्रेम, और उनमें भी मैया का प्रेम जिन्होंने कृष्ण को, भगवान को बांध दिया, वह प्रेम, और उससे भी श्रेष्ठ प्रेम गोपियों का प्रेम, और उन गोपियों में ही सबसे श्रेष्ठ प्रेम राधा जी का, जिससे कृष्ण उनके पीछे चलते हैं। कृष्ण उनके प्रेम के ऋणी है, न पा रहे हम निर्बद्ध संजुजान। इस प्रेम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, और इस प्रेम को जो विश्व को दिया परंपरा की धारा में, रूप गोस्वामी की धारा में, रघुनाथ धारा में, उन जितने भी आचार्य हैं उनमें अन्यतम है, एक श्रेष्ठ आचार्य हैं। कौन? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। आज उन्हीं का हम लोग उत्सव मना रहे हैं। उत्सव मनाएंगे कैसे? खाना पीना, लड्डू पूड़ी पकवान बना दिया, ये उत्सव ये नहीं है। किस लिए आए, उनका उद्देश्य क्या था, जगत को उन्होंने दिया क्या। गांधी जी को लोग स्मरण करते हैं, गांधी जी ने क्या दिया, रुपया दिया हमको ना, हमको जमीन दे दिया, हमारा विवाह करा दिया, क्या दिया, किंतु दिया ना कुछ। आज सभी लोग उनको मानते हैं, कुछ दिया, भारत को स्वतंत्र करने का अधिकार श्रेय उनको है। यद्यपि हम स्वतंत्र नहीं हो सके, अभी उससे लाख गुना परतंत्र है। स्वतंत्रता किसको कहते हैं अभी नहीं समझते हम, कहां स्वतंत्र है। आज परस्पर जूतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दुनिया की नजरों में कहां नीचे गिरे हुए हैं, कहां स्वतंत्र हुए, किंतु तो अभी उसके हम ऋणी हैं। उसी तरह से हम महाप्रभु जी के ऋणी हैं, इस महापुरुष का हम ऋणी हैं। आज उन्हीं की वजह से हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं, विश्व में आज जहां भी जा रहे हैं हम लोग, हमारी भारतीय संस्कृति के विचारों को लोग सुन करके प्रभावित हो रहे हैं। इसी जगह हम देखते हैं, कम से कम तो अभी 50-60 होंगे जो कि विदेशों से सर्वत्र से लोगों से आए, वो सीखना चाहते हैं। They have assembled from whole world. I think that they have come from about 40 countries of the world. वो लोग आए हैं, सुन रहे हैं। हम लोग जो धारण नहीं करते, वो लोग उसको धारण करते हैं। कृष्ण के लिए अपना देश छोड़ा, अपना भाई छोड़ा, पति छोड़ा, पुत्र छोड़ा, घर मकान छोड़ा, और चोटी रख रहे हैं, गले में तुलसी माला है, प्याज लहसुन सब छोड़ दिया, तिलक माला धारण करके भगवान का भजन करते हैं। भारतीय जैसे लड़कियां आजकल तो फ्रॉक ट्रॉक ना जाने क्या पहनती हैं, और वहां के लोग कैसे कपड़े इत्यादि धारण कर रहे हैं, इसी महापुरुष का ये कारण है। यही महापुरुष है जिन्होंने विश्व में सर्वत्र भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, और वो भक्ति का। कलिकाल में बहुत सी उपासनाएं हैं, किंतु इन उपासनाओं में हरे नाम हरे नाम हरे नाम अयुव केवल कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य, कोई गति नहीं है। आप लोग एक दिन पूर्ण रूप में उपवास नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं कब, यदि बीबी से झगड़ा हो गया और बीबी ने झगड़ा कुछ खाने के लिए नहीं दिया है तो उपवास कर सकते हैं, या बीबी भी उपवास कर लेगी। ऐसे भगवान के लिए उपवास करो, इसमें उपवास कर नहीं कर सकते, इसमें उपवास की जरूरत नहीं, इसमें कठोर तपस्या की जरूरत नहीं, इसमें दम को अटकाने की जरूरत नहीं, इसमें समाधि लगाने की जरूरत नहीं। कलिकाल में जो समाधि लगाएंगे वो पागल हो जाएंगे, ये समझिए। ध्यान मत लगाओ, कलयुग के लिए ध्यान नहीं है, किसका ध्यान लगाएगा, जिसको आज तक कभी देखा नहीं उसका ध्यान क्या होगा। यज्ञ कलयुग में नहीं होगा, न तो ब्राह्मण ठीक है, न यज्ञ करने वाला ठीक है, न मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, न वैसे पवित्र हो सकते हैं। क्या ये ध्यान लगाएंगे, और क्या समाधि लगाएंगे, और क्या यज्ञ करेंगे, इसलिए ये सब कोविड ठीक नहीं हो सकता। ये लोग ऐसा जो कहते हैं ये झूठ बोलते हैं, ये उपासना नहीं है। इस महापुरुष ने ये बतलाया, कलयुग में केवल हरि नाम, चलते फिरते उठते बैठते छींकते फिसलते हुए भी भगवान का नाम निकल जाए, ये तो संभव है। ध्यान क्या लगाएंगे, समाधि यज्ञ तप ये सब संभव पर नहीं है। यदि कल्याण चाहते हैं, जहां है स्थाने स्थिता तुम्मांग मनोभी प्रायशो अजितो पे जीता त्रैलोक्य, जो जहां है गृहस्थ आश्रम है, चाहे वो त्यागी आश्रम में है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, चाहे हिंदू है मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई सिख कोई भी हो, उसी स्थान पर रहते हुए भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करें और भगवान नाम कीर्तन करें। यदि किसी प्रकार से भी भगवान नाम हो गया और मरते समय में छींकते समय भी फिसलते हुए भी किसी प्रकार से हो गया, कल्याण ही कल्याण। किंतु एक बात है इसमें, इस चीज को याद रखिए, यदि वैष्णव का अनादर किया, उनकी निंदा की, कोई वैष्णव घर में पधारे उसका सम्मान नहीं किया, नर्तकियों का सम्मान करना खूब लोग करते हैं, बड़े बड़े धार्मिक लोग अखाड़ा बांधे हुए, जो कि कितना 9 करोड़ रुपए का मंदिर बनाते हैं, नर्तकियों का सम्मान करेंगे, जो धर्म न कर्म कुछ नहीं जानते उनका सम्मान करेंगे कि तो जो जीवन भर गुरु की सेवा की है, शुद्ध वैष्णव है, भजन पारायण, उसका कोई आदर नहीं करता, उनकी क्या दुर्गति होगी। शायद वेदों शास्त्र में भी इसका निर्णय लिखा गया है कि क्या उनकी गति दुर्गति होगी। इसलिए वैष्णव का यथा योग्य सम्मान करते हुए, अंततः अपमान तो न करे और करते हुए भगवान का नाम करे। नहीं तो शास्त्र में लिखा है, इस महापुरुष ने बतलाया, कोटि जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे पर। कोटि कोटि जन्म यदि नाम करोगे, वैष्णव का उचित सम्मान नहीं होगा, गुरु की सेवा नहीं करोगे तो नाम का जो यथार्थ फल है वह नहीं होगा। इन्होंने अपने लिए सर्वस्व त्याग किया कृष्ण के लिए। इन्होंने कहा एक बात, यदि यथार्थ कोई ब्राह्मण है वह कौन है? जो भगवान का भजन करता है वो ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को नहीं जानता, जो इसमें आत्मा को नहीं जानता, मोटे मोटे धागे पहनने से ही ब्राह्मण नहीं हो जाता। इसलिए भगवान का भजन करने वाला, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। ऐसे लोगों को यदि आदर किया जाए तो ठीक है, नहीं तो आदर पाने के लिए योग्य नहीं है। यदि कहा जाए तिवारी एंड शू कंपनी, त्रिवेदी एंड शू कंपनी, बंगाल में मुखर्जी एंड शू कंपनी जूते का कारोबार कर रहे हैं, अमेरिका में एक जगह गया भारतीय कोई ब्राह्मण आदमी, गाय का बीफ, बीफ मैंने समझते हैं मांस, उसका कारोबार कर रहा है, कहता है जी मैं ब्राह्मण हूं, हमारे ये जनेऊ है। इन्होंने कहा ऐसे आदमी का आदर मत करो, भारतवर्ष में बहुत से लोग गोस्वामी हैं, अपने को वैष्णव कहते हैं, तिलक बहुत मोटा मोटा लगाएंगे, गले में इतनी मोटी, हमारी तो बहुत पतली है, किंतु वैष्णव का कोई आचार विचार नहीं पालन करते, भगवान का भजन नहीं करते, तो वो वैष्णव नहीं है, वो लोग गोस्वामी नहीं है। यदि मुसलमान कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति भी, चंडाल व्यक्ति भी, ये सब को छोड़ छोड़ करके भगवान का भजन करता है सचमुच में, तो वो वैष्णव है, वो गोस्वामी है, जो सारी इंद्रियों को दमन करके भगवान का भजन करता है, उसी की पूजा होनी चाहिए। हमारे पिताजी ने एक कुआं खुदवाया और 50 साल के बाद में वो गंदा हो गया, पानी नहीं साफ किया, उसमें बड़े बड़े कीड़े पड़ गए, अब वो पानी पीने से क्या होगा, बीमार होंगे। क्योंकि हमारे पिताजी ने खुदवाया इसलिए हम इसी का पानी पिएंगे, मर जाएंगे तो क्या कर तुम मरोगे। इसलिए हमारे पिताजी भजन करते थे, हमारे गुरुजी भजन करते थे, इसलिए हम वैष्णव हैं। भगवान के दरबार में ये चीज नहीं चलेगी, जो भगवान का भजन करेगा वही बड़ा है। मंदिर बनाने से नहीं होगा, लाख मंदिर बनाओ, लाख गीता छपवा करके बांटो, यदि अंतर से भगवान का और भगवान के भक्तों का आदर नहीं किया, भजन नहीं किया, इसका मतलब क्या है, इन चीजों को समझने की।